23 जुलाई शनिवार, नमस्कार, भारत फैसल मोहम्मद अली से। जर्मनी के म्यूनिख में शॉपिंग मॉल पर बंदूकधारी का हमला, 9 की मौत, 10 घायल। चलेंगे बॉन, जानेंगे म्यूनिख हमले का क्या हो सकता है असर। भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कश्मीर के दौरे पर, कर्फ्यू जारी। सुनेंगे घाटी से एक और युवा की आवाज। और ऊना मामले के बाद गुजरात में कई दलितों ने की आत्महत्या की कोशिश, लेकिन क्यों?
जो भी दलितों के बारे में केस होता है या उसके बारे में आगे कुछ चलता ही नहीं कार्यवाही,
क्यों खाया गया?
हमारे समाज के खातिर हमको न्याय चाहिए।
न्याय नहीं मिलता है?
न्याय नहीं मिलता है।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। जर्मनी के म्यूनिख शहर में कल एक शॉपिंग सेंटर में गोलियां चलाने वाले हमलावर की तलाश करीब 7 घंटे के सघन अभियान के बाद खत्म हो गई है। कल शाम शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए शहर में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया था और चप्पे चप्पे पर शहर में पुलिस हमलावर की तलाश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि अभी हमले की मंशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। म्यूनिख शहर के पुलिस प्रमुख ने अभी ये जानकारी दी है। इसकी पहचान ईरानी मूल के एक 18 साल के लड़के के तौर पर की गई है, जो म्यूनिख में ही रहता था। पुलिस भी जवाब में जब गोलियां चला रही थी तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी मौत कैसे हुई। इसकी वजह का पता पोस्टमार्टम से लगेगा। हमारे पास ये दुखद समाचार भी है कि इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल कल सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक बैठक करने वाली हैं। मानवीय सहायता एजेंसियों का कहना है कि जॉर्डन और सीरिया के बीच नो मैन्स लैंड में फंसे 85,000 शरणार्थियों को त्वरित मदद की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में एक अस्थायी रुकबान कैंप में पिछले महीने हुए आत्मघाती हमले के बाद यहां हालात और ख़राब हो गए हैं। जॉर्डन ने अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमा को प्रतिबंधित सैनिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्थाओं ने जॉर्डन से सीमाई इलाकों को खोलने की अपील की है। जॉर्डन में 65,000 से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थी मौजूद हैं। माली में तुआरेग विद्रोहियों और सरकार समर्थित नागरिक सेना के बीच 2 दिन से चल रही लड़ाई में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी माली में किदाल शहर पर नियंत्रण को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ है। सरकार समर्थित नागरिक सेना शहर से हट गई है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना और फ्रांस के आतंकवाद विरोधी दस्ते के हेलीकॉप्टर इलाके में निगरानी कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने नीस में बास्तील डे के आयोजन में हमले के पीछे खुफिया एजेंसियों की नाकामी से इनकार किया है। 14 जुलाई को नीस में भीड़ पर ट्रक से हमले में 84 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति ओला ने आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कज़नव पर भरोसा जताया है। बर्नार्ड कज़नव ने नीस में प्रमनाद दे आंग्लस में हमले के समय कम सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की बात मानी थी, जिसके बाद से उन पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा, नमस्कार भारत, स्वागत है आपका। शुक्रवार देर शाम जर्मनी के म्यूनिख में एक शॉपिंग मॉल पर हमला हुआ। काफ़ी लंबे वक्त तक जानकारी की बड़ी कमी रही। एक बार कहा गया कि हमलावरों की तादाद 3 है और ये संदिग्ध चरमपंथी हमला हो सकता है, लेकिन बाद में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि शॉपिंग मॉल पर हमला करने वाला एक 18 साल का युवक था, जो ईरानी मूल का था, और उसने बाद में खुद को गोली मार ली। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुने हरिता कांडपाल से।
जर्मनी के म्यूनिक शहर में कल स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 6 बजे से लेकर रात तक एक शॉपिंग सेंटर में हमले के बाद कई घंटों तक दहशत का माहौल रहा। करीब 7 घंटे के तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि एक बंदूकधारी ने शॉपिंग सेंटर में लोगों पर गोलियां चलाई थी और उसके बाद उसकी भी गोली लगने से मौत हो गई है। इसकी पहचान 18 साल के ईरानी मूल के एक लड़के के तौर पर की गई थी जो कि म्यूनिक ही रहने वाला था। इससे पहले चश्मदीदों से मिली जानकारी के मुताबिक माना जा रहा था कि 3 हमलावर इस गोलीबारी में शामिल थे। संदिग्ध हमलावर का शव मोसाक जिले में ओलंपिक शॉपिंग सेंटर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया। जर्मनी के मीडिया में आ रही रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध ने अपने सिर में गोली मारकर अपनी जान ले ली है। ये भी खबर है कि हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि हमले के कारण के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब से कुछ ही देर पहले म्यूनिक पुलिस के प्रमुख ह्यूबर्टा आंद्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी।
The drama started at about 1750 hours.
कल शाम 5:50 पर यह ड्रामा शुरू हुआ जब हमें पता चला कि मोसाक में ओलंपिक शॉपिंग सेंटर में गोलियां चलाई गई। पहले हमें लगा कि 3 लोगों ने गोलियां चलाई हैं और उसके बाद से तलाशी अभियान शुरू हुआ। ये मेरे 40 साल के करियर का सबसे कठिन दिन था। करीब 2,300 पुलिसकर्मियों को इस तलाशी अभियान में लगाया गया था। पुलिस प्रमुख ने कहा कि चश्मदीदों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए शॉपिंग सेंटर के पास ही मृत पाए गए एक व्यक्ति को संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस हमले में वो अकेला ही शामिल था। अब एक नज़र इससे पहले के घटनाक्रम पर। जर्मनी के म्यूनिक में कल शाम ओलंपिया शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी के बाद शहर कई घंटों तक डर के साए में सहमा रहा। म्यूनिक में शॉपिंग सेंटर में कल दोपहर एक हमलावर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस का कहना है कि गोलीबारी की शुरुआत एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट से हुई। गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए और इसके तुरंत बाद ही शहर में सड़कें, बसें, ट्रेनें, बाजार सब बंद कर दिया गया। लोगों को बाहर आने से भी मना कर दिया गया। जो जहां था उसे वहीं ठहरने की सलाह दी गई क्योंकि हमलावर के बारे में पुलिस बेखबर थी। करीब 7 घंटों तक पुलिस हमलावर को शहर भर में ढूंढती रही। लोगों के बीच दहशत और असमंजस बना रहा क्योंकि हमलावर कौन है, कितने हैं और कहाँ हैं ये साफ नहीं हो पा रहा था। इस बीच पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से तस्वीरें डालने से मना किया जिसका फायदा हमलावर को हो सकता था। जर्मनी में BRTV के एक स्थानीय पत्रकार रिचर्ड गर्ट्सहर्स ने शॉपिंग सेंटर के बाहर जब वो मौजूद थे अपना आंखों देखा हाल BBC को बताया। पुलिस काफी डरी हुई है। पुलिस 10 से 12 लोगों का समूह बनाकर बंदूक के लिए शहर की सड़कों पर घूम रही है। वो लोग हर तरफ बंदूक के ताने जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग काफी घबराए हुए हैं। ये जगह रिहायशी इलाके के बीच में है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनके शहर की पुलिस सड़कों पर ऑटोमेटिक बंदूक के लिए हमलावरों को ढूंढ रही है जैसे कि कोई बुरी फिल्म का कोई सीन हो। सैकड़ों लोग पुलिस की तलाशी अभियान को देखते हुए देर रात तक फंसे रहे क्योंकि सड़कों को बंद कर दिया गया था और उनके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच इस सारी कार्रवाई के बाद शहर में स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है और कई घंटों तक ठप रहने के बाद म्यूनिक में सार्वजनिक परिवहन दोबारा शुरू कर दिया गया है।
हरिता कांडपाल रिपोर्ट सुना रही थी जर्मनी के म्यूनिक में शुक्रवार देर शाम हुए हमले के बारे में। सीधे चलते हैं जर्मनी के शहर बॉन जहां से स्थानीय पत्रकार अनवर जमाल अशरफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अनवर साहब, ये तो साफ हो गया है कि हमलावर अकेला ही था जैसा कि पुलिस ने थोड़ी देर पहले अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि म्यूनिक में हुआ हमला किस तरह से असर डाल सकता है जर्मनी में।
देखिए, म्यूनिक का हमला अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का था और जैसा कि पुलिस प्रमुख ह्यूबर्टस आंद्रे ने भी बताया कि लगभग 7 घंटे तक ये नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा जिसमें कि हमें को थोड़ी थोड़ी याद जो है वो ढाका में हुए हाल के हमले में या फिर मुंबई के हमले की आती है। तो یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میونک میں ابھی جو حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ پچھلے ہفتے بویریا میں ہی ایک اور حملہ ہوا تھا جہاں کے ایک افغان ناگرک نے ایکس سے کلہاڑی سے لوگوں پر حملہ کیا تھا. اور بویریا جو ہے ایک بہت ہی رئیس علاقہ ہے, امیر علاقہ ہے, لیکن ساتھ ایک کنزرویٹو علاقہ بھی ہے جرمنی کا, جہاں پر آپ کو اس طرح کی چیزیں عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. اور یہ حملہ جو ہے یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ہفتے بھر کے اندر نیس میں اور پھر جرمنی کے دو حملے یوروپ کو تھوڑا پریشان تو ضرور کرتے ہیں.
یہ بتائیے انور جمال صاحب کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جرمنی میں پرواسی جو ہیں وہ کافی بڑی سنکھیا میں جو یوروپ کے لیے جا رہے ہیں, جرمنی کی طرف بھی وہ آ رہے ہیں, اور اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور یہ جو حملہ ور تھا یہ بھی ایرانی بتایا جا رہا ہے.
جی ہاں, یہ حملہ ور ایرانی اور جرمن, اس کے پاس دونوں ناگرکتا تھی, اور یہاں پر کافی ایرانی جرمن ہوتے ہیں رہتے ہیں جو کہ 80 کے دشک میں یا 90 کے دشک میں وہاں سے یہاں انہوں نے پرواس کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ریفیوجی کرائسس میں جس طرح سے جرمنی کا رول رہا ہے, جس طرح سے جرمنی نے لاکھوں 10 لاکھ سے زیادہ پرواسیوں کو شرن دی ہے, اور جس طرح سے یہاں کے لوگوں نے ان کے لیے اپنے دروازے کھولے تھے حال کے حملوں میں, اور اس کے پہلے کولون میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کو لے کر کے لوگوں میں شرنارتھیوں کے پرتی جو ہے وہ غصہ یا پھر ناراضگی اور اب تو خوف بھی لوگوں کے اندر بھر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر چانسلر انگیلا میرکل کو لے کر کے بھی ان کے پرتی بھی لوگوں کے بیچ میں جو پہلے جس طرح کا سمرتھن دکھتا تھا وہ اب اس طرح سے نہیں دکھ رہا ہے.
انور جمال اشرف صاحب بہت بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے.
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں کشمیر کی طرف. گرہ منتری راجناتھ سنگھ آج کشمیر گھاٹی کے دورے پر جا رہے ہیں. 8 جولائی کو چرم پنتھی برہان وانی کی ایک مٹھ بھیڑ میں موت ہو گئی تھی, جس کے بعد سے بھارت پرشاست کشمیر میں تناؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے. راجناتھ سنگھ سرکشا استھتیوں کا جائزہ لیں گے وہاں اور راجیہ سرکار سے بات چیت کریں گے. راجناتھ سنگھ کے دورے کو لے کر ہمارے سہیوگی واتسل رائے نے شری نگر میں موجود بی بی سی سنواددتا ریاض مسرور سے بات کی اور وہاں کی استھتی کے بارے میں جاننا چاہا.
کل بھی جو ہے جمعے کی وجہ سے اتر اور دکشنی کشمیر میں کلیشز ہوئے, ایک تو گھائل لوگوں میں سے ایک کی موت ہو گئی, اور جو کل دیر شام جمعہ کی نماز کے بعد کلیشز ہوئے اس میں بھی فریش فائرنگ میں ایک اور موت ہو گئی. تو کل ملا کے استھتی بہت تناؤ پورن ہے, اور گرہ منتری کے دورے کو لے کر ایئرپورٹ سے ہی سرکشا کی کڑی ویوستھا کی جا رہی ہے.
کہا گیا ہے کہ گرہ منتری وہاں جا کر سبھی ورگوں سے بات کریں گے, تو لوگ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی دیکھیں, جب بھی کیندر سے کوئی آتا ہے, خاص طور سے اگر پردھان منتری آ رہے ہوں اور چاہے گرہ منتری آ رہے ہوں, تو لوگوں کو ان سے ملانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ راجیہ سرکار کی ہوتی ہے, لیکن راجیہ سرکار خود بہت ہی بری پرستھتی میں پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ مکھیہ منتری محبوبہ مفتی جو ہے انہوں نے چاہا تھا کہ وہ پیڑت پریواروں سے ملاقات کریں, لیکن وہ ان کے گھر نہیں جا پائیں, بہت دور سے جو ہے پیڑت پریواروں کو بسوں میں لا کر گاڑیوں میں لا کر ان سے ملانا پڑا تاکہ ایک فوٹو اپ ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ کل بھی کافی کوششیں کر رہی تھی بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار کے کئی ورگوں کو جو ہے راجناتھ سنگھ جی کے ساتھ کی بھینٹ وارتا کرائی جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا ماحول بنا ہوا ہے اس میں بات کس سے کرنی ہے؟ ایک طرف سے پاکستان نے اس پر بہت بڑا کیمپین چلا رکھا ہے, وہ یونائٹڈ نیشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہے. دوسری طرف سے یہاں سے اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے معاملے میں کانٹرڈکشنز ہیں, جیسے آپ کہیں گے کہ یہاں شکارا والوں سے بات کرنی ہے, ویاپاری سنگٹنوں سے بات کرنی ہے, گراؤنڈ پر ان کا کتنا کنٹرول ہے؟ اب گراؤنڈ پر جن کا کنٹرول ہے یا جن کی کالز کو مانیتا دی جا رہی ہے ان کے ساتھ جب تک بات نہیں ہوگی تب تک یہ دورہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سفلتا کے بارے میں کوئی آشا جتانا مجھے لگتا ہے غلط ہوگا. لیکن راجناتھ سنگھ جی کا دورہ جو ہے وہ اس معنی میں بھی بہت مہتوپورن ہے, کیونکہ پہلی بار جو ہے 15 دنوں سے یہ وواد چل رہا ہے, جو نریندر مودی کا منتری منڈل ہے اس میں سے ایک مہتوپورن منتری ہیں, گرہ منتری ہیں, ظاہر ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہ آ رہے ہیں, اس کی مہتوپورنتا اپنی جگہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اگر بات چیت کی پیشکش بھی کرتے ہیں یا بات چیت کی آفر کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا, ایڈریس کن کو کریں گے وہ؟ جیسا کہ پارلیمنٹ میں راجناتھ سنگھ جی نے خود کہا تھا کہ ناراض یواؤں سے بات کریں گے, ان یواؤں سے انہیں بات کرائے گا کون؟ तो मामला यह है कि सरकार और लोगों के बीच जो गैप है वो अभी भी बहुत बड़ा है
जी। 15 दिन से लगातार आप पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, कई तरफ से अपील की गई, राज्य सरकार की तरफ से भी की गई, अलगाववादियों की तरफ से भी की गई और केंद्र सरकार की तरफ से भी अपील लगातार की जा रही है, क्या स्थितियों में आप कोई जमीनी स्तर पर बदलाव देखते हैं?
बदलाव सिर्फ ये है कि थोड़ा सा माहौल में हल्की सी शांति ये आई है कि 8 जुलाई से 16-17 जुलाई तक जो तीव्रता थी इस आंदोलन की वो अब कम है, लेकिन उसका फैक्टर ये है कि कर्फ्यू बहुत ज्यादा सख्त है, सभी अलगाववादी नेता जो है घरों में नजर बंद हैं, आधे जेलों में हैं।
ये थे श्रीनगर में मौजूद BBC संवाददाता रियाज मसरूर। 8 जुलाई से कश्मीर में जो हिंसा शुरू हुई है उसके बाद से उसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से अधिक घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों के जरिए पेलेट गन के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों और चेहरों और सरों पर चोटें आई हैं। कई आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। हिंसा के पहले दिन यानी 9 जुलाई को श्रीनगर के SMHS में घायलों की संख्या वहाँ की जो अस्पताल है उसमें 100 से ऊपर थी। वहाँ पहले घंटे से ही मौजूद डॉक्टर यासिर इकबाल लोन अब तक घायलों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथी जुबैर अहमद को बताया कि पहले दिन अस्पताल में कैसा माहौल था।
पहले दिन क्या हुआ कि जब हम ड्यूटी पे थे, थिएटर में अपना रूटीन काम कर रहे थे, तो मुझे कॉल आई कि इमरजेंसी में देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स, वहाँ पर उनको देखना है। तो मैं इमरजेंसी में गया। एमरजेंसी में क्या देख रहा हूँ कि वहाँ भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, 20 से 30 पेशेंट एक साथ। तो हम शुरू हो गए उनको रिसस्टेट करना, उसके बाद और पेशेंट्स आए। रिसेप्शन पे बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गया और हमने शुरू किया ट्रायज। तो पेशेंट्स जो हमें लगे उनको शिफ्ट किया वार्ड की तरह, पेशेंट्स आदों को इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा। उसके आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद पेशेंट्स का लोड बढ़ा, जो पेशेंट ऑपरेट करने थे उनका लोड बढ़ा और सिचुएशन ऐसी आई कि हमारा आई डिपार्टमेंट वो भी शुरू, उनका भी टेबल शुरू होगा, न्यूरोसर्जरी वालों ने भी ऑपरेट करना शुरू किया। क्योंकि बाहर पूरा क्राउड भरा हुआ था, हमारा वार्ड पूरा भरा हुआ था प्लेट इंजरी से। ये पहले 2-3 घंटे का है जब ये पूरी सिचुएशन थी, और 6 बजे तक तो पूरा हॉस्पिटल इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे सारा का सारा फुल था, पेशेंट से, अटेंडेंट से और डॉक्टर्स, ऑब्वियसली हम काम कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा क्योस था, बहुत सारे पेशेंट्स थे, हमारे लिए मुश्किल भी था मैनेज करना, लेकिन हमने स्टाफ को डिवाइड करके ये पेशेंट्स को रिसस्टेट करना वार्ड में, और इतने पेशेंट्स इतने एक साथ ऑपरेट करने ये तो हमने पहली बार देखा है। और जो पहले दिन आया था, मैं बात कर रहा हूँ सैटरडे की, जो पहले दिन ये सारा पेशेंट लोड जो आया हुआ था, तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे।
और ज़्यादातर इंजरीज कहाँ पर थी और किस चीज़ से?
ज़्यादातर इंजरीज आई, मेजॉरिटी ऑफ इंजरीज उसी में थी। तो ज़्यादा हेड पे इंजरीज थी, फेस पे इंजरीज थी, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद एब्डोमेन, बहुत सारा इंजरीज उन चीज़ों की। हमने पहले ही दिन कोई 16 पेशेंट ऑपरेट हमने किए पहले ही दिन।
पैलेट्स की इंजरीज थी या बुलेट्स की भी थी?
उसमें दोनों थी, पैलेट्स की भी थी और बुलेट्स की भी थी, लेकिन जो तादाद है पैलेट्स की ज़्यादा थी सैटरडे के हालात। उसके बाद संडे सेम वाज द सिचुएशन, आई में ज़्यादा इंजरीज आ रही थी। उसके बाद मंडे सेम वाज द सिचुएशन, तो उसके बाद ट्यूजडे और आई इंजरीज, हर दिन का एस्टिमेट जो था वो आई इंजरीज ज़्यादा आती थी। जैसे हमने पहले दिन 107 पेशेंट्स रिसीव किए।
तो जो ट्रीटमेंट में है उनकी आई साइट, उनकी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है?
ये डिपेंड करता है कि इंजरी कहाँ पर है। जैसे किसी को आँख में प्लेट आया, एक पेशेंट हमने रिसीव किया था जिसको शल जो होता है उसका, तो वो आया हुआ था ब्लड का, तो उसकी वजह से उसकी पूरी आँख उड़ी, तो उसका तो कोई चांस नहीं, उसको कुछ दे सकते हो कॉस्मेसिस बस। सेकंड चीज़ होती है किसी को प्लेट आया, अब वो कहाँ पे आया, आँख के किस वाले हिस्से में आया, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर ज़्यादा अंदर जितना प्लेट जाएगा उतना डैमेज ज़्यादा हो सकता है। कुछ पेशेंट्स हमारे एक्सपायर भी हुए क्योंकि उनको आधे पेशेंट्स लेट पहुँचे।
ये थे डॉक्टर यासिर इकबाल लोन, उनसे बात की थी BBC संवाददाता जुबैर अहमद ने। कश्मीर में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में BBC हिंदी बात कर रहा है कश्मीरी युवाओं से और जानने की कोशिश कर रहा है उनके अनुभवों को, वो क्या सोचते हैं। आज इस कड़ी में सुनिए भारत प्रशासित कश्मीर के उवैस फैयाज का क्या कहना है। 24 बरस के फयाज ने पंजाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। वो फिलहाल बेरोजगार हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था।
My name is Uwais Fayaz. मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ का बाशिंदा हूँ। जो बात हो रही है कि भाई आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी हो, PDP हो या NC हो, दे आर जस्ट द पेड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको पूरी दुनिया को दिखाना है कि भाई हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी है, ये है वो है, लेकिन ये सब एक सफ़ेद झूठ है। दे आर पॉलिटिकल एजेंट्स एंड दे आर पेड एजेंट्स। जो कुछ भी होता है बस पैसे के नाम पे होता है, ना ही वो हमारे नुमाइंदे हैं, ना ही वो हमारे रिप्रेजेंटेड मतलब कैंडिडेट्स है। बात हुई, बात रही बुरहान वानी की, बुरहान वानी ना ही कोई टेररिस्ट था ना कुछ था, ही वाज अ हीरो ऑफ कश्मीरी पीपल। उसने भारत की सरकार से जो लड़ाई की वो बंदूक के नोक पे की, और इसलिए की क्योंकि हमें फोर्स किया गया सो दैट वी शुड टेक अप द गन्स इन आवर हैंड एंड वी शुड फाइट विद द इंडिया। तो मैं कश्मीर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये तो एक ऑपरेशन है, हिंदुस्तान हमें जबरी तौर से हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये जंग राइट फ्रॉम 1947 चल रही है, हम तब से लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। तो पहले हमने वी ट्राइड टू फाइट अगेंस्ट दिस ऑपरेशन पीसफुली, लेकिन वक्तन फवक्तन जो हम पे जुल्म जबर डाले गए, और हिंदुस्तान हमें इस वक्त उन्होंने हमें हम पे इतने जुल्म डाले हुए हैं कि हम इस वक्त मजबूर हुए हैं कि हम अपने हाथों में बंदूक उठाए। हमने वी ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ न्यू दिल्ली, वी ट्राइड टू आंसर द बुलेट्स ऑफ न्यू दिल्ली बाय पीसफुल प्रोटेस्ट्स, उसके बाद हमने अपने हाथों में पत्थर उठाए। तो क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें, दे हैव ड्रैग्ड अस, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया हैव ड्रैग्ड कश्मीर फ्रॉम 1947 टू द AK-47।
ये थी कश्मीर से एक और आवाज।
BBC इंडिया बोल।
हिंदुत्व की राजनीति में दलितों की जगह कहाँ है? एक ओर भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, पर दूसरी ओर गुजरात में गाय का चमड़ा खींचने पर दलितों पर गोरक्षक हमला करते हैं। क्या दलितों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? इस बार इसी विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और इसी आंदोलन की दलितों से जुड़ी ही एक बात, श्रोताओं को याद होगा कि गुजरात के ऊना में 4 दलितों की बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिसके बाद वहां दलित गुस्से में है, नाराजगी में है। इसके बाद उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए करीब 20 से अधिक दलितों ने आत्महत्या की कोशिश की। BBC संवाददाता विनीत खरे अभी गुजरात के दौरे पर हैं, वो पहुंचे राजकोट और वहां के अस्पताल में कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश की जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और अस्पताल में उनका इलाज जारी है।
हम इस वक्त हैं राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो दलित थे जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की वो यहाँ पर एडमिटेड हैं, और 5 लोग हैं यहाँ पे, जिनमें से 4 की हालत थोड़ी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति है मानसिक तौर पर उन पर इस घटना का काफ़ी असर पड़ा है और वो बात करने की स्थिति में नहीं है। कुछ बताएंगे, क्या नाम है इनका? कुछ
दिनेश भाई, राजा भाई, वेगड़ा।
आप इनके क्या हैं?
मैं इसके मामा का लड़का हूँ। यहाँ हमारे गाँव में 4 लोगों ने ऐसा आत्मविलोपन किया है, अभी 2 दिन से इसकी तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है।
क्यों किया इन्होंने, कुछ बताया इन्होंने आपसे पहले?
अभी ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, जैसे हमारे गांव से 4 लोग किए हैं। इसकी उम्र 23 साल है सर।
क्या करते हैं वैसे ये?
अभी ये मजदूरी करते हैं।
तो ये जो दलितों के साथ हुआ तो ये काफ़ी नाराज थे?
बहुत नाराज है, क्योंकि इसके बारे में कोई कार्यवाही होती नहीं, जो भी दलितों के बारे में केस होता है या उसके बारे आगे कुछ चलता ही नहीं, कार्यवाही
कुछ नहीं बोल सकता है, आपको गाली भी दे सकता है।
अच्छा, दिमागी तौर पर बहुत असर पड़ा है।
हाँ, उसको मालूम नहीं वो क्या बोल रहा है वैसे, अगर उसकी जो भूतकाल हुई बात है ना, वो रिपीट हो रही है दिमाग से। अभी कभी रोना चालू कर दे, कभी हंसना चालू कर दे, कभी कॉमेडी करते, ऐसे वो इसको मालूम ही नहीं कुछ, एक मेंटल जैसा हो गया है अभी।
क्या नाम है? जहर खाया था आपने?
एसिड भी है।
क्या नाम है आपका?
जगदीश।
क्यों खाया जहर?
समाज की खातिर, हमको न्याय चाहिए।
न्याय नहीं मिलता है?
न्याय नहीं मिलता है।
जहर खाने से आपके चीज़ें आपको लगता है बदलेंगी? आप तो खुद को नुकसान कर रहे हैं।
बदलेगी चीज़ें।
क्या काम करते हैं आप?
मैं मजदूरी करता हूँ।
कितना कमा लेते हैं?
300-400। शादी हो गई, बीबी है, बच्चा है।
जब से घटना हुई थी तब से परेशान थे?
घटना से ऊना में हुई नहीं, इसीलिए।
क्या दिमाग में गुजर रहा था?
वो उसको मारा, हमारे लड़कों को, हमारे भाइयों को, इसलिए हमने वो थेरेपी प्रोविजन किया।
वीडियो देखा था आपने?
वीडियो देखा था।
क्या दिमाग में गुजरा?
दिमाग में कुछ रहा था, कम कुछ करके दिखा दिया।
क्या आपको लगता है चीज हो जिससे दलितों को न्याय मिले?
वो पता नहीं, न्याय जरूर मिलेगा। जिसने हमारे वो चारों लड़कों को मारा है उसी हमको ऐसे मारेंगे। जय भीम, जय भारत।
क्या नाम है आपका?
मेरा नाम किशोर है। आज जेर कहता है क्या, वो मेरा 5 आदमी है दलितों का, इसका कोई न्याय नहीं मिलता सर, इसलिए मैंने नेट में देखा। आज जो ये काम हो गया था ये 15 दिन बाद मैंने नेट में देखा।
क्या आपने क्या सोचा, दिमाग में क्या आया जब आपने वीडियो देखा?
क्रोध आ गया था, कुछ कर दूँ समाज के लिए।
और अब देखते हैं कि भारतीय अखबार क्या कर रहे हैं। हरिता अखबारों के पुलिंदे के साथ हम मौजूद है, क्या कर रहे हैं अखबार?
जी, आज के अखबारों में म्यूनिक में हमला छाया हुआ है, जैसा कि हमने बताया है, अभी अभी खबर आई है।
रिपोर्ट पढ़ के सुनाइए भी श्रोताओं को।
10 लोगों की मौत हो गई और उसकी पहचान कर ली गई, लेकिन अखबारों के मुताबिक ये जब छपे थे तब 3 लोगों की मौत की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने ये भी पिछले हमलों की जो हाल ही में हुए हैं जिससे यूरोप में परेशानी बढ़ी है उनका जिक्र किया है कि 19 जुलाई को अफगान मूल के एक शरणार्थी ने जो है वो चाकू और कुल्हाड़ी से हमला किया था जर्मनी में कुछ लोगों को पर। वहीं 14 जुलाई 2016 में एक बास्टिल डे आयोजन पर नीस में फ्रांस में जो हमला हुआ था उसमें 84 लोगों की मौत हो गई थी और 22 मार्च को भी
कार्यक्रम
जी उस दिन भी काफ़ी तेज़ घटनाक्रम था जो बदल रहा था बार बार। और मार्च 22 को ब्रसल्स एयरपोर्ट पर हम आत्मघाती हमले हुए थे जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। तो हाल ही में यूरोप में इस तरह के हमले देखे गए हैं। इसके अलावा एक और खबर जो छाई हुई है कि भारतीय वायुसेना का एक मालवाहक विमान कल गायब हो गया था। जनसत्ता अखबार लिखता है कि वायुसेना का परिवहन विमान बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया है, चालक दल सहित इसमें 29 लोगों को लेकर ये विमान पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। और मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज अखबारों में छाई हुई हैं। अच्छा। उनके खिलाफ जी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
FIR का दौर है, एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और दोबारा जो है दूसरी बार
भाजपा से निकाले गए दयाशंकर सिंह की पत्नी ने उन पर पत्नी और मां ने उन पर FIR दर्ज कराई है। दैनिक भास्कर अखबार लिखता है कि माया बोली सबक के लिए गाली दी और पत्नी ने पूछा मरवा भी दोगे क्या। दरअसल मामला ये है कि लखनऊ में दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था और उस दौरान उनकी मां और बहन के लिए कई अपशब्दों का इस्तेमाल
किया गया था
तो उसी के खिलाफ उन्होंने ये FIR दर्ज 4 लोगों के खिलाफ करवाई है लखनऊ में।
जब शब्दों के इस्तेमाल पर जो है वो
और आज पूरे उत्तर प्रदेश में बेटी के सम्मान में भाजपा का प्रदर्शन होने वाला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि टीवी चैनलों पर लगाम कसी जाए क्योंकि कश्मीर की जो स्थिति है, भारत प्रशासित कश्मीर में जो स्थिति है उसको लेकर एक तरह का जो हिस्टेरिया टीवी चैनलों पर क्रिएट किया जा रहा है उस पर लगाम लगाई जाए क्योंकि पिछले दिनों कश्मीरी मूल के एक IAS अफसर शाह फैसल ने नाराज़गी जताई थी कि उनकी तुलना जो है बुरहान वानी के साथ की गई, उसे लेकर वो काफ़ी आहत हैं।
हाँ, उसमें दिखाया गया था, कुछ लोगों ने कहा था कि बुरहान वानी ऐसे हैं और ये एक इंसान जो है
जी, तो द हिंदू अखबार ने इस खबर को उठाया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब हरिता, चलते चलते अब एक बार BBC समाचार, विश्व समाचार लोगों को फिर से सुना दें।
जर्मनी के म्यूनिक में कल एक शॉपिंग सेंटर में गोलियां चलाने वाले हमलावर की तलाश करीब 7 घंटे के सघन अभियान के बाद खत्म हुई। पुलिस ने इसकी पहचान ईरान मूल के एक 18 साल के लड़के के तौर पर की है। इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। मानवीय सहायता एजेंसियों का कहना है कि जॉर्डन और सीरिया के बीच नो मैंस लैंड में फंसे 85,000 शरणार्थियों को त्वरित मदद की जरूरत है। माली में तुआरेग विद्रोहियों और सरकार समर्थित नागरिक सेना के बीच दो दिन से चल रही लड़ाई में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। हिलरी क्लिंटन ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वर्जीनिया के सीनेटर टिम केन उनके साथ राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनकर उतर सकते हैं। बीबीसी समाचार।
राजेश चौहान ने स्टूडियो संभाला था और बाकी तकनीकी मदद पहुंचाई थी। एक घंटे बाद धर्मेश भारती के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।